سے اشاعتی تفسیر کا احمدو صلی اللہ رسول کریم اور ماباد فاؤ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولا و کفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. سورہ غاشیہ معروف صورتوں میں سے ہے اور اکثر جو تیسویں پارے کی صورتیں اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں ان میں سے ہے, اور پھر یہ کہ نمازوں میں اکثر پڑھی جا رہی ہوتی ہے, اور جو مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, ان میں اس کی عمومی طور پر تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. ان آیات میں ایک جو مثال دی گئی ہے وہ بہت مشہور ہے, اس کی بہت سی تعبیرات ہیں, کیونکہ مثال ایسی ہے کہ جس سے عام طور پر غیر عرب نامانوس سے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو, اس لیے غیر عرب افراد کے لیے اس کی بہت سی توجیہات مفسرین نے کی ہیں. آج ان توجیہات کے ساتھ ساتھ جو کی گئی ہیں ایک اور توجیہ جو کہ بعض اشارتی تفاسیر اختیار کرنے والے مفسرین نے کی ہے, اس کا بھی انشاءاللہ ہم مشاہدہ کریں گے, اس کو دیکھیں گے. اگر ایک ترجمہ سورت کے آغاز سے ہم لکھ لیں تو اس میں انشاءاللہ ایک مضمون کا ربط اور تعلق بھی جو ہے وہ واضح ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ہل اتاک حدیث الغاشیہ, کہ آئی تمہارے پاس چونکانے والا انداز ہے. مکی سورت ہے اور اس کے خاص انداز میں سے یہ بات شامل ہے کہ چونکا دینا, باخبر کرنا, متنبع کرنا, جھنجھوڑنا ان صورتوں کا خاصہ ہے. ہل اتاک حدیث الغاشیہ, کہ آئی تمہارے پاس خبر, بات, دونوں معنی میں حدیث کا استعمال ہوتا ہے, اس شے کی جو چھا جانے والی ہے. غاشیہ ایسی شے جو ہر ایک کو اپنے اندر سمیٹ لے, یعنی وہ قیامت, وہ روز قیامت کا کی ہولناکی, اس دن کی پریشانی, اس دن کا بڑا معاملہ. وجوہ یومئذ خاشعہ, اس روز بعض چہرے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے, ان کے اوپر ایک عجیب قسم کی ہیبت طاری ہوگی. عاملۃ ناصبہ, وہ چہرے کون سے ہوں گے؟ وہ جو کہ بہت عمل کرتے کرنے والے تھے, یعنی افراد. چہرے سے مراد عربی زبان میں خاص طور پر شخصیت مراد ہوتی ہے, وجہ سے مراد شخصیت. اللہ وجہ ربک, سوائے تیرے رب کے چہرے کے, چہرے کا مطلب رب کا چہرہ ہی صرف نہیں بلکہ ذات خداوندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. عاملۃ ناصبہ, وہ چہرے جو بہت عمل کرنے والے تھے مگر عمل کر 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 تھک جانے والے تھے. نصب, قرآن حکیم میں اور بھی بہت سے مقامات پر لفظ استعمال ہوا ہے. سورہ کہف کی جو آیات ہم پچھلی نشست میں دیکھ رہے تھے وہاں پر بھی ذکر آیا تھا نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب ہم اس مقام سے آگے نکل گئے تو لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, کے الفاظ ہیں کہ تحقیق اس سفر میں ہمیں تھکاوٹ پہنچ گئی. وہاں پہ مفسرین نے بات کی کہ جب تک اللہ کے حکم کو اس کے حکم تک پورا کیا جائے تو دین میں تھکاوٹ نہیں, مگر جب آلریڈی اس پہ بوجھل پن نہیں ہے, مگر جب انسان اپنی طرف سے کچھ ایجاد کرے یا کوئی غلط راستے پر چل پڑے, کچھ بدعت ہو, تو اس میں پھر تھکاوٹیں بھی ہیں اور وہ باعث تھکاوٹ ہی ہے, اس کا کوئی نتیجہ بھی کارگر ہونے والا آخرت میں نہیں ہے. تو کہا یہ جو عاملۃ الناصبہ ہیں, ایک تو وہ ہیں جو کہ کچھ نہ کرنے والے ہیں وہ اس دن پریشان ہوں گے, دوسرے ایسے بھی ہوں گے جو بہت کرنے والے ہوں گے مگر پریشان ہوں گے. کرتے رہے اعمال مگر اس میں اخلاص نہیں تھا, اعمال کرتے رہے مگر اس میں وہ سنت کے مطابق نہیں تھے, بدعات پر مشتمل تھے. چنانچہ عاملۃ الناصبہ ایک بہت ہی سنگین نتیجہ بتایا جا رہا ہے. ایک طبقہ ایسا ہوگا روز قیامت جو کہ اپنے اعمال کے باوجود کچھ پلے نہیں رکھتا ہوگا. ایک اس شخص کا بھی تذکرہ ہوا کہ تمہیں معلوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا ایک وہ صحابہ اکرام سے کہ بتاؤ کہ اتدرون من المفلس, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, حقیقی مفلس وہ ہے جو روز قیامت بہت سے اعمال لے کر آئے گا مگر ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کے ساتھ اور کوئی ظلم کیا ہوگا, اور اللہ یوں کریں گے کہ اس کے اعمال پہلے تو دوسروں کو دے دے کر, اچھے اعمال اس کے دوسروں کو دے کر ان کے کھاتے پورے کیے جائیں گے, اور اس کے بعد جب اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو دوسروں کی برائیاں اس کے اوپر لاد دی جائیں گی اور ان سب کے ساتھ وہ جہنم واسی کیا جائے گا. کہ یہ ہے مفلس, میری امت میں مفلس میری شریعت میں مفلس وہ شخص ہے جو کہ اعمال تو لے کر آئے مگر پلے اس کے پاس کچھ نہ رہے، آخر کار جب چاہیں گے. تو فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلا نارن حامیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈال دیے جائیں گے. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا، خاص طور پر یہاں لفظ تصلا جو ہے نا یہ خلاف قاعدہ ہے. تو جب یہ آج صبح میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ یہ ترجمہ اس کا جو کیا گیا عام طور پر جو کیا جا رہا ہوتا ہے وہ مختلف ہے، تو حضرت شیخ الہند کا ترجمہ دیکھا تو انہوں نے خاص طور پر کیا ہے کہ وہ ڈال دیے جائیں گے جہنم میں، یعنی صرف یہ نہیں کہ جا ملنے والے ہوں گے. تصلا نارن حامیہ، ایک بہت ہی ہولناک قسم کی بہت ہی گرم دہتی ہوئی آگ میں یہ لوگ ڈال دیے جائیں گے. تصقا من عین آنیہ، اس کے بعد انہیں ایک ایسے کھولتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا لیس لہم طعام، جس سے کوئی پینے کا فائدہ نہیں ہوگا، یعنی وہاں سے پی کر پیاس نہیں بجھے گی. اچھا یہ جو کہا کہ پیاس نہیں بجھے گی الفاظ میں نہیں آیا، مگر یہ جو آخری صورتیں ہیں قرآن حکیم کے کہ ان کا خاصا بلاغت ہے. اردو زبان میں بھی ہم بعض باتیں کہتے ہیں مکمل نہیں کہتے ہیں، بلکہ سوال میں ایک بات ہوتی ہے جواب میں صرف ہاں یا نہیں کہہ کر اس پوری بات کو ریپیٹ کرنے کی حاجت نہیں رہتی. اسی طرح سے بلاغت عربی کی بھی خاصا ہے، چنانچہ یہاں پر بھی اسی طرح کا اسلوب ہے. فرمایا تو اس کا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا مگر اس کے باوجود، یہ محذوف ہے، مگر اس کے باوجود ان کی پیاس نہیں بجھے گی. کیوں؟ آگے ذکر آ رہا ہے کہ کھلائے تو جائیں گے اس کے باوجود ان کی بھوک ختم نہیں ہوگی. تو اس کے ساتھ اس کا ایک تطابق ہوتا ہے، عربی کا قاعدہ ہے کہ تطابق، یعنی ایک پچھلی شے کا بعد والی شے کے ساتھ ایک مناسبت کا پایا جانا. تو کہا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان جہنمیوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا کھانے کو مگر خاردار جھاڑیاں، جیسے ببول اور کیکر کے جھاڑیاں ہوتی ہیں جس میں نوکیلی چیزیں ہیں اور وہ دانتوں سے اور منہ میں چبائی نہیں جا سکتی، اس کو کہتے ہیں ضریع. ایک ہے وہ جو کہ سادہ جانور کا کھانا ہے، وہ آسان ہے، انسان بصورت مجبوری وہ جانور کی غذا بھی کھا لیتا ہے زندہ رہنے کے لیے، مگر جس میں کانٹے ہوں وہ انسان کیسے کھائے، یعنی مرتا ہوا بھی نہیں کھا پاتا، وہ ہے جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. کانٹے دار جھاڑیاں، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور یہ کھانا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، نہ تو اس سے وہ موٹے ہوں گے، سمین کہتے ہیں موٹے کو، نہ تو یعنی ان کی جسم کو غذا لگے گی، اور لا یغنی من جوع، اور نہ ہی انہیں بھوک سے وہ مستغنی کرے گی، بھوک بھی ختم ان کی نہیں ہوگی. وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو اس روز اپنی بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، لسائلہا راضیہ، اور اپنی سعی و جہد کی وجہ سے وہ راضی ہوں گے، ان کو جو کچھ دیا جائے گا اس پر وہ خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، اونچے باغات میں ہوں گے یا بلند مرتبہ مقامات میں ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جنت کی نعمتوں میں ایک عجیب نعمت یہ بھی ہے، اور شاید اس کو وہ شخص زیادہ اپریشیٹ کرے جو دنیا میں اس شے سے پریشان رہتا ہوں کہ یہاں باوجود کوشش کے بھی انسان بہت سی ایسی باتیں سننے پر مجبور ہوتا ہے جو وہ سننا نہیں چاہتا، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ اور ایسی چیزیں ہوں جو کہ منع ہے شریعت میں، یا بعض اوقات ہلکی بات، ادنا بات، ایک عامیانہ بات، اور ایک جو ہے وہ عقل، فہم، ذوق، جمال، بلندی، حسن، اس سے اس کی اعلیٰ سطح سے گری ہوئی بات، بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اپنے ارد گرد اگر اللہ نے کسی کو کچھ ذوق دیا ہو، اپنے ارد گرد دیکھے تو بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی صحیح اردو بولنے والا نہیں ہے، یعنی زبان کوئی صحیح نہیں بولتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زبان خراب ہو رہی ہے. پھر آپ کو کبھی پریشانی ہوتی ہے کہ جس سطح پر لوگ عام طور پر گفتگو کرتے ہیں، ہر دن میں اگر 10 لوگوں سے آپ مل رہے ہیں تو 10 میں سے 9 آدمی ایسی باتیں کریں گے یا ایسے امور سے متعلق باتیں کریں گے جو آپ کا مسئلہ نہیں ہے یا آپ کی وہ پریشانی نہیں ہے، یا آپ اس میں اس سے ہمدردی کی وجہ سے تو اس سے اس گفتگو میں انگیج ہوتے ہیں، مگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہے، نہ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، بس مجبوراً بعض معاشرتی پابندیاں، بعض جو ہے وہ آپ کے منصب کے تقاضے، بعض آپ کی یہ دینی ذمہ داریوں کے تقاضوں کے طور پر آپ کو سب کچھ سننا سنانا اور نبھانا پڑا ہوتا ہے. تو یہ کسی ذوق لطیف پر بہت گرش ہے. آپ کسی کو کہیں کہ بھئی یہ اتنے من سامان اوپر پہنچا دو تو وہ آسان ہو، بنسبت ذوق کے خلاف بات کو سنتے رہنا اور بھگتتے رہنا اور برداشت کرتے رہنا. قرآن حکیم عجیب بات یہاں جنتیوں کے لیے ایک نعمت ذکر کر رہا ہے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں پر وہ کوئی لغو بات یعنی جو ان کے لیے کارگر نہیں ہے نہیں سنیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ ایسا انتظام کرے گا کہ کھانے میں جیسے ذائقہ، لوگ اس سطح پر زندگی گزارتے ہیں نا کہ بھائی ذائقہ کھانے میں ایسا ہونا چاہیے، فلاں مزہ ہو، فلاں مزہ ہو، مگر یہ جو سننے کا ذوق ہے، اعلیٰ بات سننا، اعلیٰ بات سمجھنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، और इसका जो ज़ौक है ये एक आला सती ज़ौक है ना, इसको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में पूरा फरमाएंगे जन्नतियों के लिए, कि कोई हल्की बात मेयार से गिरी हुई बात वहाँ पर उसको सुनने को नहीं मिलेगी। ला तस्मऊ फीहा लागिया, और सिर्फ ये नहीं कहा कि वहाँ लग नहीं सुनेंगे, लागिया। अल्लामा अलूसी ने लिखा रहमतुल्लाह कि ये जो आखिर में ता ले आते हैं तानीस वाला, और लग मुअन्नस लफ्ज़ नहीं है, तानीस लाते हैं तस्गीर के लिए, छोटा बताने के लिए, यानी छोटी सी लग बात भी नहीं सुनेंगे। कायदा तो ये है कि मुअन्नस में गोल ता आती आखिर में, मगर बास चीज़ों में जैसे इबल ऊँट को कहते हैं, और इबला अगर कहते ना तो ये छोटे ऊँट को कहते हैं, यानी उसका मुअन्नस होना ज़रूरी नहीं है, मुज़क्कर ही छोटा हो। कई कवायद हैं तस्गीर के, मगर उनमें से यानी किसी शायद के छोटे, जैसे हम कहते हैं किताब, किताब चाह, और देख देख ची, एक बड़ी शायद छोटी शायद ना, तो इसी तरह से एक है लव बेकार बेहुदा, और एक है लागिया वो जो कि बहुत हल्की सी बुरी, हल्की सी बेकार, हल्की सतह, बस उसको भी कहा वो भी नहीं सुनेंगे। यानी उसमें मुबालगे के साथ बताया कि इंतहाई बात तो दूर की बात, बिल्कुल इब्तदाई लफ बात भी नहीं सुनने को मिलेगी, और वो बात मिलेगी जो कि उनके लिए तस्कीन का, राहत का सामान हो। यानी कह सकते हैं कि जहाँ जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामो दहन की और नाव नोश की बहुत सी नेमतें रखी हैं, वहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल नेमतें भी रखी हैं जन्नत में।
दुनिया में एक बहुत आम सा आदमी बेचारा है जिसकी इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत लो है, लेकिन उसका अमाल है कि वो जन्नत में जाएगा, और एक फलसफी हकीम जो है वो भी जन्नत में जा रहा है, तो वहाँ पर उनके आईक्यू लेवल एक हो जाएगी क्या?
दोनों के लिए अपने अपने काम
होंगे।
जन्नत है सबके अलग। एक साहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि रसूलुल्लाह मुझे काश्तकारी बहुत पसंद है और बैल चलाना, हल चलाना मुझे बहुत पसंद है, क्या जन्नत में मैं खेती बाड़ी कर सकूंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो चाहोगे कर
सकोगे,
वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, वहाँ तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम चाहो, वलकुम फीहा मा तदउन, जिसका सवाल
यानी वो था ना लतीफ बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी,
इससे मजाक की बात है। फरमाया ला तस्मऊ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया, और वहाँ पर ऐसे चश्मे होंगे जो जारी सारी रहेंगे, बहते रहेंगे, कभी बंद नहीं होंगे। फीहा सुरूरुन मरफूआ, और ऐसे तख्त लगाए जाएंगे उनके लिए जो ऊँचे होंगे, यानी ऐसे महसूस होता है जैसे नीचे से नहर बह रही है तो उसके पानी के छींटे ना आए, अगर चाह रहे हैं तो सही ऊँचे हो जाएँ, और इसी तरह से और दीगर मंजर देखने के लिए ऊँचे तख्त उनको वहाँ पर फराहम कर दिए जाएंगे। वह अकवाब मौजूआ, और वहाँ कप कासे प्याले रखे होंगे बहुत ही अच्छी तरह तरतीब और सलीके से, ये भी मौजूआ भी बहुत खास खास बात है। अच्छा, इससे पहले जो ये अकवाब का है ना, ये कूब की जमा है, और ये कूब या कूब जो है ना कप को कहते हैं। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह का एक दरस कुरान रिकॉर्डेड इस सूरत का मौजूद है, तो मौलाना ने वहाँ अजराए तफन्नुन ने बात की है, लगता है कि अंग्रेज़ों के पास कप भी नहीं था, इन बेचारों ने हमारे कूब से यानी अरबी के कूब से अपना कप बनाया। बे के साथ कहते हैं बे, अरबी में काफ वाव बा है,
या पे
ऐसे होंगे जो कि बिखरे हुए नहीं होंगे, बड़े सलीके से, करीने से, एहतमाम के साथ सजाए गए होंगे। यानी जन्नत में चीजें बिखरी हुई नहीं है, नेमतें हैं मगर सलीके के साथ हैं, और वो भी ये सलीका भी जो है ना ये आंखों की ठंडक का सामान है। जिस शख्स को सलीका, जो सलीका मंद हो उसके लिए मुस्तकिल बेचैनी और कर्ब का सामान है कि चीज़ें बिखरी
हुई,
और वो परेशान होगा
बैठ
नहीं सकता, और कोई चीज़ इधर से उधर है, कोई चीज़ आगे पीछे है। तो जन्नत में इस तरह पर भी उसकी तस्कीन का सामान होगा कि कप भी अगर उसको कहिए कि शराब के प्याले वहाँ दिए गए हैं और जो शराब तहूरा है उसके लिए, तो वो भी मौजूआ है, यानी अच्छी तरह से सजाए गए हैं। अकवाब मौजूआ व नमारिक मसफूफा, और कालीचे कालीन होंगे, कालीन तो एक होता है सादा, और एक आजकल जिसे रग कहते हैं ना, कारपेट रंग ज्यादा थिक होता है ना, ये कार्पेट थिक होता
है, नरम होता
है, नरम होता है, यानी जो जिसपे ऊन ज्यादा होता है वो कौन सा रंग है, कार्पेट रंग है। तो गलीचा उसे कहते हैं, यानी कार्पेट से कालीन से ज्यादा गहरा और जिसमें पैर रखा जाए तो धस जाए, और वो भी बड़े सलीके से बिछाया गया है बताया जा रहा है, वह नमारे को मसूफा और वहाँ पर बिछाए गए सफ के अंदाज में, जैसे सफ लगाते हैं ना, मसफूफ होता है एक सफ दूसरी सफ तीसरी सफ, इस तरह से कारपेट भी वहाँ पर खास नौयत के बिछाए जाएंगे। व ज़रा भी यूँ मफसूसा, और इसी तरह से उसके लिए और उस ओढ़ने, यानी जैसे एक बिछा दिया, एक तख्त लगा दिया तख्त के ऊपर, फिर एक ओढ़ने का सामान या बिछाने की एक खास चादर वो डाली जाएगी। यहाँ तक तो नेमतों का बयान हुआ। इसके बाद फिर ये जो हिस्सा है आज के लिए मौजू जो था वो यहाँ से इशारतन अख्त कर रहे हैं, यानी दाई और मुदरस के औसाफ। हमारे को साथ शेख अदीस हैं जिनसे मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी, उनको इन आयात से इस तस्कीर का बड़ा खासा है, ज़ौक है, और अक्सर बुखारी शरीफ के ख़त्म पर वो जब बयान फरमाते हैं तो तलबा से कहते हैं कि भाई तुम अब जो है ना आलिम हो गए हो, यानी लोग तुम्हें आलिम समझेंगे और अब जो है ना तुम जाओगे काम करोगे दीन का, तो ज़रा ये सिर्फ मदरसे की सनद पर इत्तेफाक ना करो, अल्लाह से भी सनद ले लो मुज़क्किर होने की। और फिर ये आयात पढ़ते हैं और इससे बताते हैं कि आयात, इन आयात में एक मुदर्रिस आलिम दाई मुसलिह मुबल्लिग उसके औसाफ बयान हुए हैं, हालांकि अल्फाज में नहीं हुए। कैसे हुए हम देखिए, फरमाया कि पहले तो देख लीजिए जो आम तर्जुमा है वो क्या है, अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, क्या तुमने देखा ऊँट की जानिब कैसे वो तख्लीक किया गया, वइल समाए कैफा रुफियत और आसमान की जानिब के वो कैसे बुलंद किया गया, वइल जिबाल कैफा नुसिबत और पहाड़ की जानिब देखा तुमने वो किस तरह से नस्ब कर दिए गए, वइल अर्ज कैफा सुतिहत और ज़मीन की तरफ देखा कि वो किस तरह से बिछा दी गई और हमवार कर दी गई, उसको सतह उसकी बरकरार रखी गई, फ़ज़किर इन सारी चीज़ों को देखो और नसीहत हासिल करो, इन्नमा अंता मुज़क्किर, और ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो तस्कीर करवाने वाले हैं, याद दहानी करवाइए, ये चीज़ें तो सारी लोग देख रहे हैं जो इन दलाइल फितरत हक़ायक़ कायनात को देखकर अपने लिए तस्कीर का सामान कर लें, तो आप उनको नसीहत करने वाले हैं। लस्त अलैहिम बिमुसैतर, अच्छा वो क्या है, देखिए चार चीज़ें यहाँ बयान हुई हैं। आम तफ़सीर इब्न कसीर ने भी ये की और कहा कि ये क्या है, फरमाया कि देखो एक अरब जब जाता था सहरा में तो उसको चार चीज़ें नजर आती थी, और यहाँ वो जो गौर व फिक्र है ना उसकी दावत दी जा रही इन आयात में। एक बहुत ही यानी आसान बात, जो शख्स इसमें गहराई में ना उतरना चाहे बिल्कुल सती बात यह है कि भाई ऊँट देखो ऊँट कैसे ज़बरदस्त चीज़ है, सही है, इसमें भी बहुत निशानी है। क्या शक है इसमें कि ऊँट में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक की बहुत निशानी है, आसमान देखो ये भी बहुत निशानी है, और ये निशानियाँ देख कर अल्लाह को पहचानो। मगर इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ने जो बात लिखी वो क्या है, और इसी तरह अल्लामा अलूसी रहिमहुल्लाह ने रुहुल मानी में भी लिखी, वो ये है, कहते हैं कि इससे आगे इन चार चीज़ों से एक खलबत की तरफ इशारा है। वो खलबत क्या है कि जब सहरा नशी बदू वो अकेला हो जाता था तो जब वो अपने साथ देखता तो उसे ऊँट नज़र आता था जिस पर वो सवार है, अपने दाएँ देखता तो उसे पहाड़ नज़र आता, बाएँ देखता तो उसे पहाड़ नज़र आता, ऊपर देखता तो आसमान नज़र आता, नीचे देखता तो ज़मीन नज़र आती है। इन चार चीज़ों पर अल्लाह ने जिक्र कर दिया, और ये चार डायमेंशन जो है ना ये जमा हो रही हैं, यानी एक तो ना यूँ ऊपर इस तरह, और अगर यूँ आप इसको लेकर आए तो ये जहाँ आकर जमा हो रही है वो शख्स है जो इन चार के माबैन है, और इसे कहा जा रहा है इस खलबत में जब तुम्हें कोई दूसरा इंसान नहीं दस्तियाब, इन चार सिमतों पर गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि हर सिमत का खालिक अल्लाह है, और ये गौर व फिक्र, ये खलबत का गौर व फिक्र तुम्हें तौहीद तक पहुँचा देगा। तो यानी इन चार चीज़ों को आप रिड्यूस करें और कहीं जमा करें तो खलबत है, और अगर इनको आप खोलें तो पूरी जलबत तो पूरी कायनात है, यानी ऊपर आसमान है उसकी वसतें कोई महदूद है, नीचे ज़मीन है वो कितनी महदूद होगी, वो तो बहुत वसी है, फिर दाएं बाएं पहाड़ हैं और दरमियान में उसकी वो सवारी है। एक तफसीर, अच्छा दूसरी तफसीर क्या है कि ये इमाम मुबर्रद बड़े नहवी हैं और बहुत बड़े फन बलागत के माहिर हैं, वो फरमाते हैं कि यहाँ पर इबल जो है ना इससे मुराद ऊँट नहीं है, उनके मुख्तलिफ कौन है, कहते हैं इससे मुराद बादल है। बिल्कुल इसकी गुंजाइश है, और आज भी आप कभी गौर कीजिए आसमान पर जब बादल आ रहे होते हैं तो बाज बादल जो है उसकी आपको सूरत ऊँट सी नजर आएगी, और कुरान हकीम ने मिसाल भी दी है जहन्नम की चिंगारियों को कि वो ऐसे होंगे जैसे बिटके हुए ऊँट, जैसे बिटका हुआ ऊँट दूर जाता है ऐसे चिंगारी जहन्नम से निकल कर जा रही होगी। इसी तरह से यहाँ अरबों में ये बात यानी मुहावरे में दाखिल थी कि बादल चूँकि आता बहुत तेज़ी के साथ है तो उसको वो जो है इससे यानी ऊंट से ताबीर करते थे। फिर इसी तरह उसकी जो सूरत आसमान पर नजर आती थी उसको ऊंट से ताबीर करते थे। अच्छा उसकी उसके उसके उसकी दलील वो क्या देते हैं? वो कहते हैं दलील बलागत इसकी ये है कि यहाँ चार चीज़ें जमा हुई, दो का ताल्लुक सिमत उलवी से है, दो का ताल्लुक सिमत सिफली से है, नीचे से है, दो का ऊपर से। एक एक का ज़र्फ़ है, दूसरा दूसरे का ज़र्फ़ है, एक मसरूफ़ है, दूसरा मसरूफ़ है। ज़र्फ़ मसरूफ़ कप है, कप के अंदर चाय है ना, तो ये ज़र्फ़ कहलाता है, वो मसरूफ़ कहलाता है। आसमान का मसरूफ़ आसमान ज़र्फ़ है, आसमान का मसरूफ़ बादल, ज़मीन ज़र्फ़ है, ज़मीन का मसरूफ़ पहाड़। तो कहते हैं ये है तताबुक जिसकी वजह से यहाँ बादल कहना ज़्यादा बेहतर, मगर ये इनकी शाज़रा है, उमूम मुफसरीन ने सिर्फ नहीं किया, मगर बहरहाल जिक्र ज़रूर करते हैं। अल्लामा आलूसी से भी गुजरा नहीं गया इस बात इस राय के जिक्र किए बगैर तफसीर में आगे। कहते हैं ये है बलागत के अतबार से बात दुरुस्त, और कहते हैं ये अल्लाह ने दलील दी कि भाई ऊपर देखो, और ऊपर देखो आसमान ही नहीं बनाया, उस सर्फ में मजमून भी रखे हैं और बादल है, ये भी बादल भी अल्लाह की निशानी है, और ज़मीन देखो और सिर्फ ज़मीन ही नहीं बनाया, ज़मीन ही नहीं बनाई बल्कि ज़मीन में पहाड़ भी जमा दिए। अच्छा और इन दोनों का अपना खासा है, अल्लाह ने वो चीज़ जो बैठी हुई जमी हुई है वो ज़मीन है उसको हमवार किया, और साथ साथ उस पर मेघों की नौइयत में पहाड़ गाड़ दिए। आसमान को देखो इसको बगैर किसी छत के बनाया, और उसी नौइयत पे यानी बगैर किसी जुड़ी हुई शय के होने के बगैर वहाँ बादल रख दिए, बादल भी नहीं जुड़े हुए ना ज़मीन से ना आसमान, मुअल्लक आसमान बगैर पिलर्स के बगैर किसी सुतून के, और बादल बगैर पिलर बगैर सुतून के। अच्छा ये चार चीज़ें हो गई, और इन चारों चीज़ों पर गौर करने से एक और डायमेंशन से नसीहत का सामान होता है। हमारे उस्ताद साहब जो फरमाते हैं वो क्या है, वो कहते हैं कि देखो इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है अफला यंजुरूना इलल इब्ल कैफ खुलिकत, क्या तुमने ऊँट को नहीं देखा कैसे वो बनाया गया? तो कहते हैं अगर ये ऊँट की तकलीफ पर कोई बात है तो ऊँट किसने नहीं देखा, ऊँट को देखा सबने, तो इसमें कौन सी ऐसी बात हुई? ये कहा जा रहा है एक दाई व मदरस से जिसे इन चार बातों के बाद ये कहा गया कि फज़क्किर, अब नसीहत करो, यानी अब तुम दर्स दे सकते हो, अब तुम नसीहत कर सकते हो, इन्नमा अंत मुज़क्किर, अब तुम मनसबे तज़कीर पर फायज हुए हो जब चार नौइयतों की सिफात तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। पहली नौइयत क्या है? ऊँट को देखो क्या है, जफाकशी उसका सबक है, वो सात सात दिन तक का पानी जो है वो अपने अंदर रख लेता है, जो शायद दूसरे नहीं खाते, यानी आपके में होगा अरबों के यहाँ ऊँट के लिए करते क्या थे, खजूर बहुत सबके साथ रख लेते थे, खजूर ऊँट पर सवार बद्दू खाता था और उसकी बीन जो है वो ऊँट को खिला देता था। अच्छा तो वो ऊँट बीज खाकर जो है वो सफ़र करता था। फिर गज़ा आमतौर पर दीगर जानवरों की नीचे से नर चारा होता है, जबकि ऊँट जो है वो जो जरी जो लफ्ज़ पहले आया था यानी खारदार बबूल के कांटे और उसके वो भी खा जाता है, ऊँट के मुंह को अल्लाह ने अजीब बनाया कि कांटे वाला निवाला भी खा जाता
है,
क्या करता है मगर वो कांटे खा जाता है और ऊपर ऊपर से खाता है, यानी उसके लिए तोड़ कर देना किसी का मजबूर नहीं है, मोहताज नहीं है, बर्दाश्त कर और सहरा के नामुआफिक हालात के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता, उसके लिए तेज आती हुई बादे समूम यानी गर्म हवा और उसमें रेत के जर्रात जो भून के रख देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, उसके बावजूद उसके इस्तेकामत पे कमी नहीं आती, वो डटा रहता है। कहते ये औसाफ होने चाहिए दीन का काम करने वालों में, और इसी तरह से भूख प्यास उसका मसला ना हो, वो जो दस्तियाब हुआ चलते चलते जो है उसको जो बबूल के कांटों से मिला वो खा लेता है, अपने मालिक को मालिक से ऊँट कभी शिकायत नहीं करता खाने पीने की, बकिया जानवर आप ना खिलाएं तो वो काम नहीं करेगा, कमज़ोर हो जाएगा, खुद जाकर नहीं खाएगा, ऊँट को सिर्फ ये करना पड़ता है कि उसका एक पैर जो है वो बांध कर छोड़ देते हैं, वो खुद अपना पानी भी पीता है और पानी स्टोर कर लेता है और उसके बाद जो है खुद खा पी भी लेता है, अपने मालिक से अपने रिस्क के लिए कभी सवाल नहीं करता, मगर बहुत सौ का रिस्क लाद करता, अपने मालिक से अपने रिस्क का सवाल नहीं करता, और जफाकशी है। अच्छा उसका पैर ऐसा है कि जहाँ बकिया धंस जाते हैं ये वहाँ जम जाता है, यानी अल्लाह ने उसके पैर को ऐसा बनाया रेत में ऊँट का पैर अगर सख्त हो ना नीचे से तो फिर तो धंस जाए, जैसे घोड़े का पैर है, ऊँट का पैर जो है वो नीचे से उस बहुत नरम होता है और उसकी सतह फैल जाती है, और जितनी रेत धंसाने वाली हो वो उतना ही फैलता चला जाता है पैर उसका, हड्डी काफ़ी ऊंची होती है, दरमियान में नरम हिस्सा होता है, और ये जो कहिए कि माहौल के साथ अपने आप को एडजस्ट कर कर सफ़र तय करना है ना, ये सलाहियत करते हैं कि ये ना सोचा करो ये ना देखा करो कि हालात मुआफिक होंगे तो हम दीन का काम करेंगे, हालात जैसे हों हमें सफ़र करना है, दीन का ये काफिला आगे बढ़ता रहेगा, कयामत कोई और नबी और रसूल नहीं आने वाला। तो ये जो अल्लाह ने इब्न के अंदर सलाहियत रखी है, ये अल्लाह सुबहानहू व तआला उस मुज़क्किर को जो बाद में नसीहत का काम करने वाला ना, उसको फरमा रहे हैं कि ज़रा ऊँट को तो देखो, ये मेरी हकीर सी मखलूक, इसके अंदर अगर ये सिफात हैं तो तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने बहुत पोटेंशियल रखा है, ज़रा उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करो, उस कुव्वत को इस्तेमाल करो और दीन के लिए इस्तेमाल करो।
दो और क्वालिटीज ऊँट की जो है, एक तो ये कि इतना सादा और हम्बल होता है कि छोटी सी बच्ची भी अगर उसकी उसके ले तो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू ये भी है कि अगर इसको जब गुस्सा आता है ना तो फिर इसको कोई काबू नहीं कर सकता। अगर कभी उसने कोई किस्सा सुना रहा था कि मेल और फीमेल ऊँट का कोई मामला था, और जब वो फीमेल ने देखा कि मेल ने, तो उसके बाद पागल होकर रहमत जा दी थी। तीसरी एक बात ये है कि ऊँट के जो पाँव होता है ना, हमारे दो हिस्से हैं तमाम जानवर, तो ऊँट के पाँव के तीन हिस्से होते हैं। वो पहला हिस्सा जो होता है ना, वो उसको बैंड करता है, तो थोड़ा ऊंचा होता है तो सवार उसमें सवार हो जाता है, फिर उसके बाद उठाता है। तो मतलब ये है कि भाई एक लीडर जो है, मुबल्लिग जो है, उसमें ये क्वालिटीज भी होनी चाहिए कि जिस सतह पर जाना पड़े वो जाए। मैं तो समझता हूँ कि आज तक लीडरशिप पर दो तीन मरतबा मुझे मौका हुआ था, लेकिन आइंदा अगर भी मौका हुआ तो मैं ये यानी ऊँट के अंदर में जो क्वालिटीज अल्लाह ने दी।
अब देखिए अगला
मसला, कुरान करीम की ये कहते हैं कि एक मौजज़ा है कि जिस अक्ल और फहम का बंदा इसका मुताला करेगा उसको उतना उसको सुकून मिलेगा, यानी इतनी गहराई के साथ कोई मुताला वही कर सकता है कि जिसको अल्लाह ने इतना फहम दिया हो, और एक आम आदमी तो नहीं करेगा। तो आम आदमी को कभी ये नहीं होगा कि मेरे तो समझ में नहीं, वो तो कहा अच्छा ऊँट कैसा नजर आता है उसको, लेकिन ऊँट की क्वालिटी जो है ना, फिर कोई हकीम हो तो मनसब भी होगा कोई जान, माशाल्लाह
बड़ा चाहे तो काम के फजक्कर इन्नमा अंत मुज़क्किर, इसके साथ जो मुनासिबत है वो बहुत खुश
है। वो जो हदीस है ना, कि पता नहीं हदीस है या अबू बकर का कॉल है कि ता कयामत कुरान जो है अपने अनफोल्ड करता जाएगा, इसके लॉकर और फहम की बातें हैं, तो उधर एक वक्त के लिहाज से जिस तरह
लिविंग
बुक
है।
अगली सलाहियत क्या है, वैलस समाए कैफ रुफ़अत, आसमान को देखो कैसे बुलंद किया गया। ये आसमान जैसे ऊँट का सबक इस्तेकामत और एक कहिए कि नामुवाफिक हालात में भी चलना था, आसमान का सबक बुलंदी है, और ये बुलंदी जो है ना वो अफकार की भी मतलूब है, किरदार की भी मतलूब है, अखलाक की भी मतलूब अखलाक, और फिर इसी तरह से आसमान एक साइबान है, उस साहिबान के तहत बहुत से लोग इंसान पूरी दुनिया रह रही है। तो जिस तरह आसमान साहिबान बन जाता है, ऐसे एक दीन के दाई को चाहिए कि वो अहले ईमान के लिए साहिबान का काम करे, उसे चाहिए कि वो, और अगर ये बादल है यानी ऊँट की जगह बादल है तो वो भी उसका वस्त है ना, यानी अगर हम उसको इबल से ताबीर करें बादल, तो वो भी फिर सैराब करता है, खुद पानी कहीं से लेकर आता है और बंजर ज़मीन को सैराब करता है। तो आलिम का, दाई का, मुदरस का काम भी है कि वो बंजर ज़मीनों को सैराब करें। पर आसमान बुलंदी, और ये बुलंदी बहुत ज़रूरी है, यानी हम मुसलमान जिन मुस्तकिल अमराज का शिकार हैं उनमें से एक मर्ज जो है ना वो दनी व तबाह होना है। लफ्ज़ मुश्किल है, दनी व तबाह यानी तबीयत के अतबार से, मिजाज के अतबार से पस्त होना, यानी ये अजीब बात है। यानी आप जो है ना देखेंगे कि एक बुलंद से बुलंद काम होता है, मगर ना वो अपने ही मसाइल का शिकार हो जाता है, यानी अपने मुसलमानों ही में मुसलमानों के मसाइल का शिकार
जुज़ियात में घुस जाता है,
या ये होगा कि मुसलमान उसे उस काम को फेल कर देंगे। मुसलमानों में कैसे कैसे लोग उठे, मगर मुसलमानों ने अपनी दनानत तबाह की वजह से, अपनी पस्ती किरदार की वजह से उन बड़े लोगों की कदर नहीं की,
टोपी नहीं पहनी
है, मतलब बहुत सी बातों मजलिसों में बहुत कुछ देखने को मिलता है। फिर इसी तरह से ये कि अखलाक, हम चाहते हैं कि हम ये कहें कि भाई अखलाक हमारा ना देखो, किरदार हमारा ना देखो, बस ये देखो दीन कैसा और कबूल करो, तो ये कब तक हम कहते रहेंगे, जब तक ये बुलंदी हम खुद अपने अंदर यानी दीन की दी हुई बुलंदी हम इख्तियार ना करें। जैसा कि आसमान बुलंद है, आसमान बुलंदी का पैगाम देता है तो खुद बुलंद होकर देता है, ये थोड़ी कि आसमान पर बुलंद लिखा हुआ है। तो मुसलमान दुनिया के लिए अगर बुलंदी का पैगाम दे, और रफ़त का पैगाम दे, वसअत का पैगाम दे, समाहत का पैगाम दे, कुशादगी का पैगाम दे, तो ख़ुद ये कैफियात अपने अंदर पैदा करें, और ये मुसलमान की सिफत भी है, और साथ साथ दाई के लिए तो बहुत ज़रूरी।
बस जो है कि सितारों पर डालते हैं कमर,
जी बिल्कुल, उसके उसकी पहुँच को वहाँ तक हो। अच्छा, आज आला बात की कबूल, कोई ऐसी इतने प्रेशर्स होते हैं माशा आस पास के इतने प्रेशर्स होते हैं, खुद बहुत से दीनी लोग वो इस प्रेशर का शिकार रहते हैं कि बात तो यही है मगर अगर हम ये कह देंगे तो लोग हमारे लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। अब क्या वजह है उसकी? वजह यह है कि दनानत तबा आ रही है साथ। इसका एक सबब अब शायद जिक्र करना कोई इतनी गैर मुनासिब बात भी ना हो, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के मतलब मैं कहूँ तो बात नामुनासिब होगी मगर थानवी रहमतुल्लाह की फरमाई भी है उनके हवाले से कोट करना। थानवी रहमतुल्लाह ने यह बात कोट की अपने एक मलफूज में कि फतावा आलमगीर के हाशिए के हवाले से कि हुआ ये कि औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में बाज़ लोगों ने ये मसला किया कि जो बाज़ ख़ानदान होते ना ऐसे जो पहले तो बहुत ज़्यादा था कि भाई ये मोचियों का ख़ानदान है ये फलां का ख़ानदान है यानी हकीर कस्म के पेशे अख्तियार करने वाले ख़ानदान, उनके लोग जो है वो दीन पढ़ रहे थे और ना दीन पढ़कर तो उससे वो क्या रहा था कि लोग कहते थे अच्छा दीन ये लोग पढ़ते हैं, हकारत पैदा हो रही थी। तो उस वक्त ये औरंगज़ेब आलमगीर ने जो फतावा आलमगीर मुरतब करवाने वाले बहुत खुदा तर्स बादशाह गुजरे हिंदुस्तान के, उन्होंने पाबंदी लगा दी कि जो अच्छे ख़ानदान हैं वही दीन पढ़ेंगे और कमतर ख़ानदान के बच्चे दीन नहीं पढ़ सकते, दूसरी चीज़ पढ़ें। तो उलमा ने जी हैरान हूँ बात है, उलमा ने फतवा दे दिया कि अगर औरंगज़ेब आलमगीर ने काम गलत किया है, दीन की तालीम हर शख्स हासिल कर सकता है चाहे वो जमेदार का बेटा हो चाहे वो मोची का बेटा हो कर सकता है। इस पर जो है वो उलमा ने ये फतवा दिया ये गलत है, इसका इकदाम गलत है और औरंगज़ेब आलमगीर ने काम किया ये समझाने के लिए। असल में हकीकत दोनों तरफ बैठी हुई है, न ये बात बिल्कुल सही है न वो बात बिल्कुल गलत है। क्या हुआ कि उसने किया कि मुखन्नस होते हैं ना उनका हिजड़ा कहते हैं, चंद मुखन्नसों को लिया और लेकर दरबार में जो है ना एक आलिम के जिम्मे काम लगाया कि इनको हदीस रसूल सिखाओ और वो जो है हदीस सीखने लगे। और फिर एक दिन उलमा का इज्तिमा बुलाया और उन मुखन्नसों को उलमा के से लिबास पहनाए और मस्तद पर बिठा दिया और कहा कि आज बड़े शुयूख हदीस तशरीफ़ लाए हैं तो आप हज़रात इनसे समय हदीस कीजिए। तो उसने उन लोगों ने हदीस पढ़ना शुरू की और तालियाँ भी दरमियान में जिस तरह की ख़ास अंदाज से पीटने लगे और जो है वो गा गा कर पढ़ने लगे। तो वो जो उलमा थे वो खड़े हो गए कि मतलब कपड़े वपड़े तो आलिम वगैरह कहने लगे ये कौन बदतमीज़ लोग हैं जो हदीस रसूल की तौहीन कर रहे हैं और ये क्या तरीका है। कहा कुछ भी नहीं है तो कुछ भी तौहीन कर रहे हैं, तो हदीस सीखी है इन लोगों ने और दीन हर मुसलमान सीख सकता है, ये मुखन्नस है मैंने इनको दीन पढ़वाया है हदीस सुना है। अब उन्हें समझ में आया कि इसने क्या सबक किया, यानी सबक ये था कि एक है किसी की बुनियादी उठान वो अगर आला होगी तो उसको जब इल्मे दीन सिखाया जाएगा तो इल्मे दीन की वसतें और उसकी जो कहिए कुशादगी और उसका बुलंद होना है ना वो उसमें ज़ाहिर होगा, और अगर किसी की तबीयत में पस्ती होगी तो उसको आप इल्मे दीन सिखाइए तो वो दीन को भी महदूद कर लोगों के सामने रखें।
लेकिन ये लाजिम है कि मुखन्नस जो है वो इसी तरह सब ऐसे ही होंगे?
वो ऐसे थे जो उसने पेश किया,
तो उन्होंने चुना होगा इसको ना।
हाँ, हो सकता है
मगर दो पॉइंट
मगर ये पैगाम का शायर ना उसने वो पैगाम ये था, इसीलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने बात लिखी कि मैं ये कहता हूँ कि आज हर मुतमव्वल ख़ानदान से कुछ लोग इल्मे दीन के लिए फारिग किए जाए, इसलिए कि अगर मुतमव्वल ख़ानदान ऐसे ख़ानदान जो माशरे में बाइज़ा समझे जाते हैं उनके बच्चे दीन नहीं पढ़ेंगे और गरीब तबका इसी तरह हकीर तबका जो समझे जाते हैं उनके बच्चे अगर सिर्फ दीन पढ़ेंगे तो दीन की और इल्मे दीन की हिफाजत होगी। ये यानी उससे उन्होंने सबक निकाला। इसमें बात सही है कि इस्लाम ये नहीं कहता कि कोई तबकाती तबका है अच्छी है और सिर्फ दीन पढ़ना अमीरों का काम है गरीबों का नहीं, ये नहीं कहता, हरगिज़ ये नहीं कहता। और हमारी तारीख भी इस पर शाहिद है कि गुलामों ने दीन सीख सीख कर जो है वो बादशाहों और आज़ादों को पढ़ाया, मगर एक है माशरे की एक ऐसी हकीकत जो बाहर पाई जाती है उसको इग्नोर भी नहीं किया जाता। तो इस्लाह का एक ज़रिया ये भी है कि जो वसअत और रफअत अल्लाह ने जिसको अदा की है वो दीन को उन करे और उसके ज़रिए से दीन का पैगाम आला सतह पर वाज़ेह हो सके। बहरहाल यहाँ दाई की सिफात में से भी ये है कि उसके अंदर एक वसअत और एक बुलंदी पाई जाती हो, उसके अंदर एक किरदार व अखलाक की बुलंदी पाई जाती हो। तो आसमान से ये बात थी, वही समाई कैफ़ रुफ़ियत वही जबाल कैफ़ नुसिबत, और पहाड़ों को देखा तुमने किस तरह वो जमा दिए गए, ये है वो किसी बात पर इस्तकामत। और जब तक दाई के अंदर ये इस्तकामत ना हो और वो हालात से मुतासर हो जाता हो, जैसे कोई शहर मिसाल के तौर पर कहीं कोई रेत का टीला है तो वो रेत के टीले आप देखते हैं बदलते रहते हैं सहराओं में,
आज यहाँ टीला है, हवा चली इस तरफ की तो टीला वहाँ को बन गया, और फिर उसके बाद हवा इस तरफ को चली तो वो टीला वहाँ ख़त्म हो गया और दूसरी तरफ एक रेत का टीला बन गया। सहरा में तो ऐसा, पहाड़ के साथ ऐसा नहीं होता। जलजले आ जाएं, बारिशें हो जाएं, आंधियाँ चल जाएं, पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिला करते, खड़े रहते। तो ये इस्तकामत और ये अपने दीनी मौक़िफ़ पर, तौहीद पर, रद्द बिदात पर, इसी तरह शिर्क के मुखालिफत पर और गैरुल्लाह की हाकमियत के बिलमुक़ाबिल, और इसी तरह जो भी वक्त का फितना है उसके, और वक्त का फ़िरौन है, वक्त का नमरूद है, उसके बिलमुक़ाबिल खड़े होने की ये सलाहियत, जिस तरह पहाड़ जमा रहता है, ये दाई और मुदर्रिस के अंदर और आलिम के अंदर ये सिफत होनी चाहिए। और इसके लिए कहा कि ज़रा पहाड़ को देखो, इसके अंदर ये वस पाया जाता है। तुम इसे देखते हो कि ये इन औसाफ़ का हामिल होता है, ये वस अपने अंदर पैदा करो। फिर इसी तरह फरमाया वाइलल अर्ज़ कैफ सुतिहत, और ज़रा देखो ज़मीन को कैसे बिछाई गई। जो मुखालिफ हो उसके बिलमुक़ाबिल पहाड़ होना है, और जो हामी हो उसके बिलमुक़ाबिल नरम हो जाना है, बिछ जाना है, तवाज़ो इख्तियार करना है, इंतहाई आजजी, इनकसारी और किसी गलती पर रुजू कर लेना कोई मसला नहीं होना चाहिए। ज़मीन की ये खासियत है ना, ये ऐब भी छुपा लेती है, ये मुर्दे भी दबा लेती है, ये गंदगी को भी ख़त्म कर देती है, ये मिट्टी जो है वो तहारत का ज़रिया बन जाया करती है, और इसके अंदर क्या कुछ दफन हो जाता है, क्या कुछ दफन हो जाता है। इसके अंदर ये समाहत होनी चाहिए, आलिम मुदर्रिस दाई के अंदर ये कैफियत होनी चाहिए, लोगों के राज उसके अंदर दफन हो जाए, लोगों के लिए उसके अंदर ये तवाज़ो हो, और उसके अंदर ताफुन नहीं पैदा होना चाहिए, उसके अंदर जो है ये इस तरह की गहराई जैसी ज़मीन के अंदर गहराई है, और वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर उसके बाद उसे कारगर बना देती है। यानी ये ज़मीन जो है वो इसके अंदर लकड़ी दफन हो जाए तो कोयला बन जाया करती है, और तरह तरह की मादनियात इससे बरामद हो जाया करती हैं, तो इसके अंदर जो दफन होता है वो भी कारगर हो जाया करता है। ये औसाफ़ इसके अंदर होने चाहिए, और ख़ास तौर पर तवाज़ो। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना कि फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की रहमत है कि आप अहले ईमान के हक में नर्म हैं। लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्ब, और बफर्ज़ महाल अगर ऐसा होता कि आप तुंद खूह होते, सख्त मिजाज होते, सख्त दिल होते, लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो ये सारे आपके इर्द गिर्द से छट जाते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जा रहा है कि नर्म खूही मानने वालों के लिए ये इतनी ज़रूरी है आपके अंदर, दाई के अंदर, नबी और पैगंबर के लिए अगर ज़रूरी है तो बाद उसके वारिसीन के लिए और उलमाए दीन के लिए और दाईयाने दीन और मुबल्लिगीन के लिए कितनी ज़रूरी है। कहा कि अगर उनके गिर्द से छट जाएं तो किसी और के गिर्द क्या जमा हो जाएं दीन के लिए, अगर वो तवाज़ो इख्तियार ना करें। इसीलिए दीन कहता है कि मन तवाज़ा लिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना, जो कोई अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करेगा, रफ़ाहुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे हकीकी बरतरी और बुलंदी अता फरमाएगा। मगर शर्त यह है कि तवाज़ो हो अल्लाह के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए ना हो। दिखावे की तवाज़ो जो है वो कभी कारगर नहीं होती, और इंसान शायद ख़ुद जो है वो अपने आप को धोखा देता है, समझता यह है कि बाज़ चीज़ें अगर मैं अदाकारी में अख्तियार कर लूँ तो सामने वाला आँखों से देख कर उसका एतबार कर लेगा, मगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान जिस शय को बनाया ना वो सिर्फ़ आँखों से नहीं देखता, वो दिल से महसूस भी करता है। तो बाज़ औक़ात देखी हुई, आँखों से देखी हुई किसी शय को इंसान झुठलाता है अपने दिल की गवाही की वजह से। तो किसी का तवाज़ो हकीकी है या नहीं है, ये वाकई दिल से फूटने वाली कैफियत की वजह से है या ये किसी मसलहत की वजह से है, ये भी वाज़ हो जाता है। बाज़ औक़ात तवाज़ो ख़ुद तकब्बुर का इजहार होता है, बाज़ औक़ात तकब्बुर जो है वो तवाज़ो के लिबादे में ज़ाहिर हो रही होती है। ऐसे के कोई शख्स लिखता है अपने नाम के साथ हकीर कम तरीन, और उसके बाद डॉक्टर साहब एक बार अल्लाह फरमाया करते थे कि इस बात की अलामत उसको कह दीजिए आप कि आप वाकई हकीर और कम तरीन हैं। अब अगर उसका चेहरा लाल पीला हो जाए तो उसका मतलब ये तो किब्र था।
लेकिन तवाज़ो इसको मैं समझ रहा, तवाज़ो आप दूसरे के लिए करते
हैं, तवाज़ो इंकसारी, उसका नतीजा आपके ऊपर इंकसारी है, इंकसारी फेल लाजिम है, तवाज़ो दूसरे के लिए।
जो कह रहे हैं ना बात है, बड़े मुसलमान बार बार एकर 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 लिखते हैं, अब दिल से है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, लेकिन वो शागिर्द अपने उस्ताद के लिए पता नहीं दिल लुमा वो अपना 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 लिखते, वो भी तो अजीब सा लगता है।
इसमें मुबालगा अच्छी बात नहीं है, बाकी जहाँ तक इसका कहिए कि बुनियादी सतह है वो दुरुस्त है। इसलिए कि सहाबा इकराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह के अलकाबात इस्तेमाल फरमाया करते थे, और फिर सहाबा के लिए ताबईन ने इस्तेमाल किए, जैसे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बहुत से मौक़ों पर हदीस के ज़खीरे में इस तरह आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब हदीस ज़िक्र करते थे ना उससे पहले बड़े अलकाबात लाते थे, और वो अपनी मोहब्बत का इजहार था कि औसानी खलीली,
مجھے میرے خلیل نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات وصیت کی، اور پھر ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کہیں کچھ اور القاب، کہیں اور کچھ اور، اس طرح کے استعمال
ہیں۔
ہاں، مگر یہ چونکہ تواضع کا ایک انداز تھا، اور کہیے کہ کلام میں بھی آداب کا لحاظ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ایک صحابی کے لیے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں، اور اسی طرح
کی بات ہے،
اور پھر بعد والوں نے بھی کی، مگر اس میں تکلف اچھا نہیں، یعنی آج کل ہوتا ہے دو دو لائنوں میں تو صرف القابات ہوتے ہیں، پھر نام غائب ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے پوری زندگی جو ہے صرف پاکستان میں ہی کام کیا، اب اس کے نام کے ساتھ شیخ العربی والعجم لگا دینا، یہ مبالغہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے جو کہیے کہ اس کی افادیت اس کی مسجد تک تھی صرف، اب اس کو جو ہے وہ حکیم الامت بنا دینا، مبالغہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے بہرحال، مگر بہرحال جو حقیقی عظمت کے حامل تھے ان کے لیے آغاز سے ہی القاب کا اختیار، القابات استعمال کیے گئے۔ جیسے مثال کے طور پر امام ولی رحمہ اللہ کو امام اعظم کہتے ہیں، امام شافعی کو مختلف القابات دیے، کسی نے کہا امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے خاص طور پر اب قری الاثر کا استعمال ہوا۔
ان کی زندگی میں امام اعظم کہتے تھے،
جی جی زندگی میں کہا گیا، بات بھی کہا۔ اور ان اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے لیے امام اہل سنہ، اہل سنت کا امام انہیں کہا گیا۔ امام مالک کو امام دار الہجرہ کہا گیا، دار الہجرت یعنی مدینہ کے امام۔ اور اسی طرح سے امام سفیان ثوری کو جو ہے امام و بلاد الشرق کہا گیا۔ اسی طرح مختلف مختلف نام لوگوں کے لیے اختیار، جب حضرت اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخاری شریف کی روایت کی روح سے خود ان کی زندگی میں ترجمان قرآن کا ان کے لیے لقب اختیار کیا گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لیے جب وہ ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے آواز ہی یہ لگائی کہ صلوا علی ترجمان القرآن، آؤ ترجمان القرآن کے جنازے میں شرکت کرو۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے لیے ان کی زندگی میں حجت الاسلام کا لقب اختیار کر لیا گیا۔ تو اس طرح جس کو اللہ نے اس طرح کوئی امام بخاری کے لیے امیر المومنین فی الحدیث کا لقب اختیار کیا گیا، امیر المومنین فی الحدیث۔ تو اسی طرح مختلف مختلف القابات، مگر جہاں تک ہے وہاں تک صحیح، اس سے آگے اس کو بہت زیادہ وسعت دے دینا یہ جو ہے وہ مبالغہ ہے، اور مبالغہ اور تکلف دین میں پسند نہیں ہے۔ جی جی بالکل، مطلب یہ چاہیے اس شخص کو چاہیے کہ دوسروں کو منع کرے، دوسروں کو چاہیے کہ وہ ادباً اور احتراماً استعمال کریں، اور اس کو چاہیے کہ منع کرے۔ مثال کے طور پر مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی زندگی میں ایک کتاب شائع ہوئی، اور اس میں جو ہے نا ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ داعی قرآن لگا کر، اچھا مسودہ ان کے ٹیبل پر گیا، وہ دیکھ لیں نظر تو چھپنے، تو اس پر جو ہے نا انہوں نے، میں نے دیکھا خود، وہ جب مسودہ ان کے پاس سے واپس آیا تو انہوں نے اس پر وہ حصہ کاٹ دیا تھا۔ اچھا پھر اس ان کے انتقال کے بعد ہم استعمال بھی کرتے ہیں، ان کی قبر پر بھی جو ایک ماڈل ٹاؤن انتظامیہ نے تختی وہاں لگاتے ہیں ہم لوگ قبر پر نا، تو وہ تختی جو تھی اس پہ یہ مرقد داعی قرآن لکھا ہوا۔ تو اب لوگ اپنے طور پر بہت سے القابات اختیار کر رہے تھے، تو ہم نے کہا چلو بس یہ داعی قرآن ایک مناسب بات ہے، اور یہ اظہار حقیقت ہے، یعنی اللہ نے ان کے ذریعے سے قرآن کی دعوت کا کام لیا، تو داعی قرآن کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ، ان کے لیے شیخ الہند کا لقب ان کی زندگی میں اختیار کیا گیا، عرب عالم عرب نے دیا۔ اچھا اسی طرح بعض اوقات کوئی سبب بھی ہو جاتا ہے، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ہوا یہ کہ دارالعلوم دیوبند سے یہ جب تک فتح الملہ میں کتاب لکھی ہے، مسلم شریف کی بہت عظیم و شان شرح عالم عرب میں بہت چلتی ہیں، اس شرح کا شرح لکھ رہے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند سے شائع ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا اور مسلم شریف کے کچھ ابواب رہ گئے جس کی شرح نہیں ہوئی اس طرز پر۔ تو دارالعلوم دیوبند نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے طرز پر اس شرح کو مکمل کر دے گا، یعنی فتح الملہ کا تکملہ لکھ دے گا، ہم اسے شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیں گے۔ تو مفتی تقی صاحب نے اپنی جوانی میں اس کا تکملہ لکھا، اور وہ کتاب آج بھی ایسی عربی میں ہے، آج بھی مسلم کی وہ شرح اسے پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کم سے کم ہزار سال پرانی کتاب ہے، جی تقی عثمانی صاحب۔ اور پھر ایک عالمی سطح پر وہ ہوا، ایک باقاعدہ پروگرام ہوا جس میں ان کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا گیا۔ تو ان کی کتابوں کو بھی سکتا ہے، وہ تو مفتی اعظم پاکستان کا ٹائٹل تھا ان کا۔ تو اس طرح بعض بعض علماء کے ایسے اسباب بھی ہو جائے گا،
تقسیم
یہ مشہور نہیں ہے، مگر یہ اس کا سبب یہ بنا تھا۔
تو فرمایا کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور دیکھی زمین کی جانب کہ کیسے وہ بچھا دی گئی، فَذَكِّرْ، فرمایا اب تم نصیحت کرو. یعنی اگر یہ چار سمتوں سے چار اوصاف پیدا ہو گئے، یعنی اوصاف کیا ہے ذرا جمع کر لیتے ہیں بات کو مکمل کرتے ہوئے، کہ ایک تو وہ کہ بنیادی سطح پر وہ خود اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور ہر شے کو دیکھتا ہو اور اس کے لیے اس سے سامان نصیحت بناتا ہو، یعنی اللہ کی نشانی، چاہے وہ اونٹ کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، چاہے وہ زمین کو دیکھے، پہاڑ کو دیکھے، ان سب کو اللہ کی نشانی باندھ کر خود پہلے سامان نصیحت اپنے لیے بناتا ہو. پھر مزید یہ کہ وہ صرف جلوت کا آدمی نہ ہو، خلوت کا آدمی بھی ہو، وہ تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کر کر، اس کی دین پر غور و فکر کر کر بعض حقیقی نتائج تک پہنچا ہو. یعنی اس کا علم صرف اس کی زبان پر نہ ہو، اس کے دل کی گہرائیوں اور اس کے ذہن کی انتہاؤں تک اس کی مناسبت بن چکی ہو. پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ آسمان جیسی وسعت بھی ہو، بلندی بھی ہو، زمین جیسی توازو بھی ہو، پہاڑ جیسی استقامت بھی ہو، اور اونٹ کے اندر پائے جانے والی جیسی یہ باد مخالف کے باوجود ایک استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی جفا کشی بھی ہو، اور بادلوں جیسا سیراب کرنے کا وصف بھی اس کے اندر پایا جاتا ہو. یہ ساری چیزیں جمع ہو جائے تو پھر اس کے اندر اب وہ حیثیت اور اہلیت پیدا ہو گئی کہ اللہ فرما رہا ہے فذکر، اب تم نصیحت کرو، فإنما أنت مذکر، بے شک تم تو ہوئی نصیحت کرنے والے، سامان نصیحت فراہم کرنے والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات کا ترجمہ مکمل کر لیتے تاکہ سورۃ پورے، لست علیہم مسیطر، اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار اور نگران نہیں بنائے گئے، آپ تو نصیحت ہی کیا کرتے ہیں. الا من تولی و کفر، اور یہ نصیحت سب کو فائدہ نہیں دیتی، اس کو فائدہ نہیں دیتی جو کہ منہ پھیر لے اور انکار کرے. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اسے بڑا عذاب دے گا، عذاب اکبر. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی جانب ان سب کو لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، اور بے شک حساب کتاب تو ہمارے ذمے ہیں، آپ حساب کتاب لینے والے نہیں ہیں، کسی کے جنت و جہنم کا فیصلہ دائی اور مدرس اور عالم کے ذمے نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمے تو آخر وقت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، فیصلے آخرت کے اللہ اپنی عدالت میں خود فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قبل حاضہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات.
موضوع صاحب نے یہ اختیار کیا ہے اس کا، اور ڈاکٹر صاحب کو حوالے سے کہتے ہیں.